تفسير. سورت زاریات مکی سورت ہے، اس کے 3 رکوع اور 60 آیات ہیں. الفاظ اور کلمات کی تعداد 360 ہے، حروف 1559 1559. اس سورت کا نام پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے، وزاریاتی ذروا. قسم ہے ان ہواؤں کی، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، اور یہ علامتی نام ہے. اس سورت کا بڑا حصہ آخرت کے موضوع پر ہے، اور پھر آخر میں توحید کی دعوت پیش کی گئی ہے. ساتھ ہی لوگوں کو اس بات پر متنبہ کیا گیا ہے کہ انبیاء کی بات نہ ماننا اور اپنے جاہلانہ تصورات پر اصرار کرنا یہ عمل قوموں کی تباہی کا سبب بنا کرتا ہے. آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک اللہ رب العزت نے ہواؤں کے جو تصرفات ہیں، ہواؤں کا عمل اور جو بادل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے جو لوگ قیامت اور عذاب کو ناممکن سمجھتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ہواؤں کا حوالہ دے کر انہیں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا ہے کہ وہ رب جو یہ کر سکتا ہے تو وہ جو ہے وہ قیامت کا عذاب کیوں نہیں لا سکتا، اور تم کیوں اس کے لیے جلدی مچاتے ہو. وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ. قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں. اس کا مادہ ہے زال را و، زال را و، اور اس کے معنی ہے اڑانا، بکھیرنا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوَا، قسم ہے بکھیرنے والیوں کی، ذَرْوَا اڑا کر. اب آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کہتی ہیں کہ میں نے کھایا اور خوب کھایا، میں نے مارا اور خوب مارا، تو دو دفعہ سیم جو مادے کا لفظ ہے آپ اس کو استعمال کرتی ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ جو ہے وہ تاکید اور جو ہے وہ اپنی جو بات ہے اس پہ زور دینا. اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور یہ جو یہاں پہ قسم کھائی ہے یہ عظمت کے لیے نہیں کھائی، بلکہ گواہی کے لیے کھائی ہے کہ جو رب یہ کر سکتا ہے تو وہ رب قیامت اور پھر عذاب کیوں نہیں لا سکتا. تو قسم ہے، وزاریاتی ذروہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں. زاریات ایسی ہواؤں کو کہتے ہیں جو گرد و غبار اڑاتی ہیں، اور یہ جو ہے ہواؤں کی صفت ہے. جیسے دربا دربن، تو فعل کے اندر تاکید کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں نا، تو اسی طرح وزاریاتی ذروا، تو یہاں پہ بھی تاکید کے معنی پیدا ہو رہے ہیں کہ ہوائیں بڑی تند و تیز ہیں، ہوائیں گرد و غبار اڑانے والی ہیں. और तमाम मुफस्सरीन का इत्तफाक है कि अजारिया से मुराद गर्दो गुबार उड़ाने वाली हवाएं हैं। और आप देखें कि हवाएं जो हैं जब चलती हैं तो क्या करती हैं, वो जो है वो गर्दो गुबार को उड़ाते हुए चलती हैं। जो तेज़ होती हैं तो उतनी ही गर्दो गुबार जो है वो तेज़ी से वो उड़ाती हैं। नंबर दो, फल हामिलाति विक्रा, हमल के मानी आपको आते हैं वज़न को उठाना, बोझ को उठाना। फल हामिलाति, फिर पानी से लदे हुए बादल उठाने वाली हैं। तो यहाँ पर ये जो बोझ है, फल हामिलाति फिर हामिला हैं हवाएं, तो मुराद है बारिश का बोझ, बादलों का बोझ इन्होंने उठाया। विक्रा, विक्रा जो है ये लफ्ज़ विक्र ये बोझ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बार के लिए भी, यानी हर वो बोझ और बार मुराद हो सकता है जिसको हवाएं उड़ाकर उठाकर चलती हैं। मसलन हवाओं के अंदर क्या होता है, उन्होंने बादल उठाए हुए होते हैं, बादलों में बारिश होती है, हवाओं के अंदर गुबार होता है, मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, कंकर होते हैं, तो ये सारी फिर चीज़ें इससे मुराद हैं कि फिर वो बोझ उठाए हुए हैं, पानी से लदे हुए बादल उन्होंने उठाया हुआ है। हवाएं जो समंदरों से लाखों करोड़ों गैलन पानी के बुखारात बादलों की शक्ल में उठा लेती हैं। फल जारियाति युसरा, फिर जारी हो जाती हैं, फिर चलती हैं आहिस्ता आहिस्ता, युसरा सुबक रफ्तारी के साथ। ये जो आयत नंबर 3 और 4 है इसकी तफसीर में मुफस्सरीन के दरमियान इख्तलाफ है। फल जारियाति युसरा, एक तो इसके यही मानी की किए गए हैं कि इससे मुराद हवाएं हैं कि भारी बादलों को उठाकर फिर वो आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर चलती हैं और ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि जितना पानी वहाँ पे तकसीम करना है तो हवाएं बस उतना पानी वहाँ पे तकसीम कर देती हैं। फल जारियाति युसरा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं। फल मुकस्सिमाती अमरा, फिर वो तकसीम कर देती हैं, यानी जितना बारिश बादल अल्लाह ताला ने कहा है तो वहाँ पे वो उन हिस्सों में तकसीम करती हैं, अमरा हुक्म। तो आप देखें कि बाज एक जगह बारिश होती है, दूसरी जगह बारिश भी नहीं होती, क्यों? अल्लाह ताला ने जो है वो वहाँ पे हुक्म नहीं दिया होता कि वहाँ पे जो है वो बारिश नाजिल की जाए। तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो बादल हवाओं ने उठाकर अपने ऊपर लादे हुए होते हैं अपने कंधों पर, तो वो जितना बारिश नाजिल करने का हुक्म होता है बस उतना ही बरसाती हैं, उतने इलाके को जलथल करती हैं, बाकी इलाके को जो है प्यासा छोड़कर चली जाती हैं, उसको खुश्क छोड़ देती हैं। जैसे बस अल्लाह ताला कहते हैं वैसे हवाएं जो हैं वो करती जाती हैं। कहीं वो बाज़ इलाकों पर तो तूफान ज़दा सैलाब बनकर नाजिल होती हैं और बाज़ इलाके जो हैं वो खुश्क रह जाते हैं। तो ये है अल्लाह की मर्जी। एक राय तो यही है कि इससे मुराद जो हैं हवाएं हैं, और जो दूसरी राय है इसके मानी है कि फल जारियाति युसरा से मुराद पानी में चलने वाली कश्तियां मुराद ली गई हैं, कि वो आहिस्ता 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 आराम के साथ वो पानी के अंदर कश्तियां चलती हैं। और फल मुकस्सिमाती अमरा जो है इससे मुराद जो है वो फरिश्ते लिए गए हैं जो कामों को तकसीम करते हैं, कोई रहमत का फरिश्ता है तो कोई अजाब का, कोई पानी का है तो कोई कहत साली का, कोई हवाओं का फरिश्ता है तो कोई मौत और हादसों का। तो बाज ने फल मुकस्सिमाती अमरा जो है इससे मुराद जो हैं दूसरे मानी फरिश्तों के लिए हैं जिनकी मुख्तलिफ ड्यूटियां हैं, और बाज ने इससे मुराद भी हवाएं ली हैं। अच्छा, ये जो कसम खाई गई है, तो कसम जो है हवाओं की जो कसम खाई गई है, या जो आखिरी 3 और 4 आयत में जो इख्तलाफ है इसमें जो कसम खाई गई है, तो कसम खाने की वजह क्या है, अल्लाह ताला ने कसम क्यों खाई है? तो मुफस्सरीन कहते हैं कि कसम खाने का मकसद ये है, आगे आयत नंबर 5 में मकसद बताया गया है, इन्नमा तुअदूना लस्वादिक, के हक ये है कि जिस चीज़ का तुम्हें खौफ दिलाया जा रहा है वो सच्ची है। और खौफ किस चीज़ का दिलाया जाता था कि कयामत आकर रहेगी। और तुअदूना वाओ ऐनदाल, ये ज़वील अज़दाद में से है, ये लफ्ज़ बयक वक्त अपोजिट मीनिंग देता है। इसके एक मानी तो ये हैं कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जा रहा है कयामत वो सच है। इसके दूसरे मानी हैं कि जिस चीज़ से तुम्हें डराया जा रहा है कयामत वो आकर रहेगी। व इन दीन लवाक़े, और जजाए अमाल ज़रूर पेश आनी है। दीन का लफ्ज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये तीन मानों में इस्तेमाल होता है। एक है कयामत का दिन, आप सूरत फातिहा में पढ़ चुकी हैं, मैं लिखी यह उम्मीद दीन। दूसरा है ज़िंदगी गुजारने का दिन, दूसरा है ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, तौर तरीके, वे ऑफ लिविंग, सूरत आल इमरान में आप पढ़ चुकी हैं इन दीन इंदल्लाह इस्लाम। और तीसरा है किसी मुल्क का कानून, आप सूरत यूसुफ में पढ़ चुकी हैं। तो यहाँ पर दीन के मानी जो हैं, ये कयामत का दिन है जो कि इंसाफ का दिन है। व इन दीना लवाक़े, और जजाए अमाल ज़रूर पेश आनी है। वसमा इज़ातिल हुबुक, कसम है मुतफरिक शक्लों वाले आसमान की, कसम है जालदार आसमान की। तो किसी ने तर्जुमा जो है हुबुक का जालदार का किया है, और किसी ने जो है वो मुतफरिक शक्लों का किया है, और किसी ने किया है कि कसम है राहों वाले आसमान की। अब हम देखते हैं हुबुक कहते किसे हैं, आप नोट कर लें, हुबुक के मुख्तलिफ मानी बयान किए जाते हैं। नंबर एक, बांधना और गिराह लगाना, इसी से मजबूती और उस्तवारी के लिए इस्तेमाल होता है, जो किसी चीज की बनावट में पैदा की जाए। नंबर दो, हुबुक उन धारियों, शिकनों और लहरों को कहते हैं जो किसी गफ और मजबूत बनावट के कपड़े में नुमाया की गई हों। अब देखिए कपड़े के अंदर भी जो धारियां होती हैं, तो जैसे ऐसे लगता है ना, लाइनें सी जैसे है, इसी तरह हुबुक के मानी लहरें, लहरों के किए जाते हैं, जो रेत या पानी जब ठहरा हुआ होता है, हवा उस पर चलती है, रेत पर या पानी पर, तो ऐसा लगता है कुछ लहरें सी, कुछ लाइनें सी बन गई हैं। इसी तरह ये लफ्ज़ बादलों के टुकड़ों के लिए भी, जो आसमान पर तह बतह मौजों और रुई के गालों की तरह नजर आते हैं, उनके लिए भी ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ये लफ्ज़ जो है हुबुक का, ये जैसे कपड़े की जीनत और हुसन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कपड़े के अंदर जो धारियां होती हैं, या कपड़े की जो मजबूती और बनावट होती है, तो उसकी एक जीनत और हुसन बन जाता है ना, उसको भी हुबुक कहते हैं। रास्ता और सड़कों को भी, क्योंकि रेत पर जो हवा से लहरें सी बन जाती हैं, या पानी जब ठहरा होता है तो लहरें सी बन जाती हैं, तो ऐसे ही लगता है जैसे कि रास्ता हो। तो कपड़े की बनावट की धारियां हो, या पानी पर पानी की जो लहरें हैं उसके जो रास्ते से हवा से बनते हैं, या उसके ऊपर रेत पर जो रास्ते से बन जाते हैं, या आसमान पर जो बादल हैं और उससे जो मुख्तलिफ रास्ते से बनते हैं, या मुख्तलिफ रुई के गाले से नज़र आते हैं, तह बतह मुख्तलिफ शक्लें सी नज़र आती हैं, तो ये लफ्ज़ जो है इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ने इसके माने ये बयान किए हैं कि हसीनो जमील और सितारों से मुज़य्यन आसमान की कसम, और किसी ने कहा कि उस आसमान की कसम जिसमें लहरें और धारियां बनी हुई होती हैं, जैसे मोती और हीरे से मुज़य्यन कपड़े में धारियां बन जाती हैं। और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सितारे मुराद हैं, जो सितारों से आसमान जो है वो खूबसूरत बन जाता है। तो ये सारे मानी हैं कि वस्समा इज़ातिल हुबुक, तो ये सारा काम कौन करता है? कसम है मुख्तलिफ शक्लों वाले आसमान की, और आसमान पर शक्लें किससे बनती हैं? सितारे देखें तो एक और उसका नज़ारा होता है, जगमग जगमग करते सितारे। आप बादल देखें तो उसका एक और ही नज़ारा होता है। तो यहाँ पे ये कसम क्यों खाई गई है? कि जो रब आसमान की मुख्तलिफ शक्लें बना सकता है, ये दरअसल आयत जो है अल्लाह की अजीम कुदरत की निशानी है कि जो रब ये कर सकता है तो उसके लिए कयामत को लाना कौन सा मुश्किल है। इन्नकुम लफी कौलिम मुख्तलिफ, आखरत के बारे में तुम्हारी बात एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो जैसे आसमान के ऊपर बादल या सितारे, उनके अंदर मुताबकत नहीं पाई जाती ना, इसी तरह तुम आखरत के बारे में मुख्तलिफ बोलियां बोल रहे हो। कोई कहता है कि बस दुनिया के बाद कोई जिंदगी नहीं है, कोई कहता है कि अल्लाह ताला दोबारा किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, और कोई ये कहता है कि जो है वो ये सारी बातें हैं ही झूठी, वो ईमान ही नहीं लाते, इनकार करते हैं। तो मुशरिकीन ने मक्का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक और कुरान और दीन के बारे में मुख्तलिफ और मुतजाद बातें कहते थे। जैसे रसूल अल्लाह को भी क्या कहते थे, कभी मजनू, कभी जादूगर, कभी शायर, कभी दीवाना कहते थे। कुरान के बारे में भी मुख्तलिफ कहते थे कि कोई आके सिखा जाता है आपको और ये अल्लाह का कलाम नहीं है, और अगर अल्लाह ने नाजिल करना था फरिश्ते पे क्यों नहीं नाजिल किया, मक्का की वादियों में से, मक्का और ताइफ की वादी में से किसी पे नाजिल क्यों नहीं किया। तो उनका मुख्तलिफ उनकी बातें थी। यू फकू अनहु मन उफिक, यू फकू इसका मादा है हमजा फा काफ, इसके मानी है फिरता है। जैसे किसी चीज का सही रुख से उसको उल्टे रुख की तरफ फेर देना, वाकया इफ्क भी आप पढ़ चुके हैं ना, यू फकू अनहू फिरता है इससे, मन उफिक जो कि फेरा जाता है। तो अल्लाह की तरफ से, नबी की तरफ से, कुरान की तरफ से, हदायत की तरफ से कौन फिरता है, जो कि हक से फिरा हुआ होता है। कुतिल अल खर्रसून, कुतिला मारे गए, ये लफ्ज़ जो है ये कुरान में लानत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लानत के लिए और धमकी के लिए कि मारे गए, मारे गए या लानत हो। ये डांट के लिए है, मलामत के लिए है। मारे गए अल खर्रासून, अटकल दौड़ाने वाले, तीर तुक्के चलाने वाले। खा रा स्वाद इसके मानी है खजूर के दरख्त या अंगूर की बेलों का अंदाजा लगाना। जैसे अंगूर तोड़े हुए नहीं होते, खजूरें तोड़ी हुई नहीं होती, दरख्त पर ही ये लगा हुआ है फल, और अंदाजे से बता रहे हैं कि इतना का फल होगा। तो खरस नखला वल करम, तो उसके लिए खारा स्वाद। इसी से ये लफ्ज किसी चीज का अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल होता है कि किसी बात की हकानियत या सच्चाई पता ना हो, बस अंदाजे से एक बात करना। तो यहां पे भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये इन्होंने अकल से काम लेना छोड़ दिया है, और कायनात की निशानियां जो कि तौहीद और आखिरत के लिए बेहतरीन निशानियां हैं, दलाइल हैं, ये उस पर गौर व फिक्र नहीं करते, बस अंदाजा लगा रहे हैं, तखमीना लगा रहे हैं, गौर किए बगैर तीर तुक्का चला रहे हैं। खर्रासा फिल हदीस इसको कहते हैं। तो कुतिल अल खर्रासून, मारे गए कयास और गुमान से हुक्म लगाने वाले, ये कौन है? अल्लज़ीना हुम फी गमरतिन साहून, जिनके अंदर दो बुरी सिफात पाई जाती हैं, ये वो लोग हैं जो कि बेखबरी में हैं, गमरतिन बेखबरी में हैं, साहून भूले हुए हैं। गमरतिन जो है ये किसे कहते हैं? गैन मीमरा, गैन मीम रा जो है इसके मानी है गहरा पानी, कसीर पानी, जिसकी गहराई अतहा इतहा मालूम ना हो सके, और शदायद और सख्तियों की वजह से इसी तरह अकल छुपी जाए। तो ख्वाहिशात नफ्स और दुनिया के लालच से जो इंसान की अकल अंधी हो जाती है, तारीक हो जाता है। तो अल्लज़ीना हुम फी गमरतिन, ये वो लोग हैं जो के ख्वाहिशात नफ्स में गर्क हैं, उसकी गहराई के अंदर हैं और उसका पता भी नहीं चल सकता। साहून दूसरी बुराई क्या है कि गफलत है इनके अंदर, गफलत का तसलसल है कि उसे बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते। यस अलून अय्याना यौमुद्दीन, पूछते हैं आखिर वो कयामत का दिन कब आएगा। यौम हम अलन नारी युफ्तनून, वो उस दिन आएगा जब ये लोग आग पर तपाए जाएंगे। तो वो ये इसलिए नहीं पूछते थे कि वो समझना चाहते थे, बल्कि मजाक उड़ाने के लिए कहते थे कि सुनते सुनते कान पक गए हैं हमारे, तो फिर कयामत आ क्यों नहीं जाती और वो अजाब आ क्यों नहीं जाता। तो अल्लाह ताला ने फिर उनकी जहनीयत के मुताबिक उनकी बात का जवाब दिया है कि ये उस दिन आएगा जब ये लोग आग पर तपाए जाएंगे। युफ्तनून मानी क्या है कि तुम्हें फिर अजाब का मजा चखना होगा। और आप देखें कि फतन जो है इसके मानी क्या होते हैं, फा ता नून, इसके मानी होते हैं सोने को आग में डालकर जो है वो पिघलाना ताकि उसका खरा खोटा पता चल सके। तो यहाँ पे इसके मानी है कि उनको अजाब में और आग में जलाया जाएगा। युफ्तनून इन्हें उस वक्त आग में तपाया जाएगा। जूकू फितनतकुम, इनसे कहा जाएगा अब चखो मजा अपने फितने का। हाजल्लजी कुंतुम बेही तस्ताजिलून, यह है वो चीज जिसके लिए तुम जल्दी मचाया करते थे। तो उस वक्त जो है उनसे कहा जाएगा कि जो तुम दुनिया में इनकार करते थे तो अब तुम्हें उसका मजा जो है वो चखना होगा। तुम्हें शक होता था ना, तो अब देख लो कि फिर उसका अंजाम क्या होता है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल ना करे और हमें जो है वो दुनिया में सोचने समझने और संभलने की तौफीक अता करे और हमें आखिरत की तैयारी करने वाला बनाए। आयत नंबर 15 से लेकर 19 तक सूरत ज़ारियात में खुदा तरसों का सिला बताया गया है, जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनका जो है वो अंजाम बताया गया है। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयून, अलबत्ता मुत्तकी लोग उस रोज बागों में और चश्मों में होंगे। और आप देखें कि आप जो हैं वो एक तरफ जन्नत के बागों का जिक्र है और दूसरी तरफ जन्नत के चश्मों का जिक्र है। और आप जो जन्नत के बागात हैं और जन्नत के जो दरख्त हैं और जन्नत के जो हम महल्लात हैं इनका ज़िक्र पहले भी पढ़ चुकी हैं। और आप देखें कि अलमुत्तकी लफ्ज़ जो है ना, इसको आप सर्कल कर लें। बार बार अल्लाह ताला बताते हैं कि जन्नत किन्हें मिलेगी, जन्नत में कौन जाएंगे जो कि अल्लाह से डरने वाले हैं, जो कि अल्लाह से डरते हुए जो है वो गुनाह छोड़कर फिर अल्लाह की बंदगी की तरफ लौट आते हैं। और आप देखें कि अरबी ज़बान में जन्नत बाग को कहते हैं, इसकी जमा जन्नात भी है जनान भी है। और जन्नत का हदूद अरबा क्या है उसको ठीक ठीक अदा करना नामुमकिन है। कुरान मजीद में खुद अल्लाह ताला कहते हैं फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रत आयुन जज़ा अम बिमा कानू यअमलून, सूरत सजदे की आयत नंबर 27। और इसी तरह जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तवील हदीस है, उसका आखिरी हिस्सा है कि जन्नत में दाखिल होने वाला आखिरी आदमी जब उसे अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त मिलेगी तो अर्ज़ करेगा, या अल्लाह अब तो सारी जगह वहाँ पे पुर हो गई, मेरे लिए क्या बचा होगा। अल्लाह फरमाएंगे अगर तुझे दुनिया के किसी बड़े से बड़े बादशाह की ममलकत के बराबर जगह मिल जाए तो तू खुश हो जाएगा। बंदा अर्ज़ करेगा हाँ या अल्लाह क्यों नहीं, अल्लाह ताला फरमाएंगे जाओ जन्नत में तुम्हारे लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी ममलकत के बराबर और उससे 10 गुना मजीद जगह भी है। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है और तिर्मिज़ी की रवायत है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर दर्जे के दरमियान ज़मीन और आसमान के बराबर फासला है। तो ये जन्नत जो है ये मिलेगी, लेकिन किन्हें मिलेगी जो कि अल्लाह से डरने वाले होंगे। तो पहली बुनियादी सिफ्त क्या है कि अल्लाह का डर और खौफ। और फिर उसके साथ ही वायून, आयन वाहिद है और उयून जमा है। और आप जन्नत की नहरों के साथ जन्नत के जो चश्मे हैं आप इनके बारे में पहले आप पढ़ चुकी हैं कि जन्नत की जो नहरें हैं, चार आपने सूरत मोहम्मद में पढ़ी, और उसके अलावा आपने पढ़ी थी सईहान, जईहान, फुरात, नील, इसी तरह कौसर और नहरे हयात, आपने ये सब पढ़ी थी ना, और उसके चश्मे। अब यहाँ पे जो है वो उयून चश्मों का जिक्र है, और चश्मे भी आपने पढ़े थे, सलसबील, काफूर, तस्नीम। तो अब आप देखें कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो है जन्नत के चश्मे होंगे। आखिजीना मा आताहुम रब्बहुम, जो कुछ उनका रब उन्हें देगा उसे खुशी खुशी ले रहे होंगे। मुफस्सरीन कहते हैं कि इसके मानी हैं कि जैसे लपक लपक कर उसे ले रहे होंगे, सखी दाता इनाम दे रहा है और वो लपक लपक कर अल्लाह के इनाम को जो है वो हासिल कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह। आखिजीना, वो लेने वाले हैं, मा आताहुम रब्बहुम, जो कुछ उनका रब जो है वो उन्हें नवाजने वाला है, जो कुछ उनका रब जो है वो उन्हें देने वाला है, तो उसको वो लोग जो हैं वो लपक लपक कर लेंगे। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे नेमतों से, जन्नत की नेमतों से फायदा उठाने की अल्लाह ताला ने मंजर कशी की है कि मा आता हूँ रब्बहुम, जो कुछ उनके रब की तरफ से मिलेगा, और क्या कुछ मिलेगा, जिसका अल्लाह ने वादा कर रखा है। वहाँ पे जखीरे हैं, खजाने हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि दुनिया में उन्होंने अल्लाह से डर कर जो है वो ज़िंदगी बसर की होगी। फिर फरमाया, इन्नहुम कानू कबला जालिका मोहसिनीन, वो इस दिन के आने से पहले मोहसिनीन थे, एहसान के दर्जे की नेकी करते थे। यहां पर आप देखें कि आपने आयत नंबर 15 में मुत्तकीन पढ़ा, अल मुत्तकीन, और 16 में मोहसिनीन पढ़ा, ऐसा क्यों हुआ? मुफस्सरीन कहते हैं कि मुत्तकीन जो है ये एक जामे सिफ्त है, और वो लोग होते हैं जो अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, और वो डरते रहते हैं कि अपनी हर बात का, हर अमल का हमें हिसाब देना है, और मुनाफ़कत नहीं रखते। और जो मोहसिनीन हैं ये कौन होते हैं? ये एहसान के दर्जे की नेकी करने वाले होते हैं। मुफस्सरीन कहते हैं मुत्तकीन है जाहरी तौर पर नेकी करने वाले, और मोहसिनीन है कि उनका बातन कैसा होता है। तकवा तो है ना जाहिर दाराना तकवा, जाहरी अमाल जो कर रहे हैं, और एहसान जो है वो उसकी रूह है। एहसान जो है वो उसकी रूह है कि वो कयामत का दिन आने से पहले वो लोग नेकोकार थे, वो अल्लाह ताला से डरने वाले थे। अब आप देखें कि अब आगे जो है ये जो लोग जन्नत में जाने वाले हैं, मजीद इनकी सिफात बताई गई हैं। पहली सिफत मुत्तकी है, दूसरी मोहसिन है, तीसरी मजीद इसकी वजाहत है कि ये कौन थे। कानू कलीलम मिनल लेली मा यह जाऊन व बिल असहारी हम यस्तगफिरून व फी अमवालहिम हक्कुल लिस्साइली वल महरूम। तो यहाँ पर जो है उनकी जो सिफात बताई गई हैं, ये तीसरी सिफत है कि रातों को कम ही सोते थे। अब आप देखें कि यह जऊन जो है इसका मादा क्या है। हा जीम आयन इसका मादा है, हा जीम आयन, और इसके मानी हैं हा जीम आयन के कि गफलत की नींद सोना, घोड़े बेचकर सोना, ऐसे सोता है ना इंसान कि उसको होश ही नहीं रहता कि और भी कोई बात है या और भी कोई अहम काम है। तो यहां पे बताया जा रहा है कि ये लोग जो थे रातों को कम ही सोते थे। तो एक ग्रोह ने इस आयत का मतलब लिया है कि कम ही ऐसा होता था कि वो रात भर सोकर गुजार दें, तो ज्यादातर वो रातों को जागते थे, और इसका कुछ ना कुछ हिस्सा कम या ज्यादा शुरू में, दरमियानी रात या आखिरी रात वो जाकर अल्लाह ताला की इबादत करते थे। एक तो इसके ये मानी बताए गए हैं, दूसरे ग्रोह ने इसके ये मानी बयान किए हैं कि वो अपनी रातों का ज्यादा हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजारते थे और कम सोते थे, और दोनों ही मानी जो हैं वो सही हैं। अब आप देखें कि रात के वक्त जागना, इसकी मुशक्कत करना, ये जन्नतियों की सिफात में से है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुत्तकी जो है, मुत्तकी लोग रात को जागते हैं और इबादत की मुशक्कत उठाते हैं और बहुत कम सोते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो, इसी तरह कतादा, मुजाहिद और दूसरे जो मुफस्सरीन हैं वो ये कहते हैं कि रात को थोड़ा सा हिस्सा इन पर ऐसा आता है जिसमें वो सोते नहीं बल्कि इबादत नमाज वगैरह में मशगूल रहते हैं, यानी कुछ ना कुछ हिस्सा वो ज़रूर अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं। तो आप ज़रा अंदाज़ा करें कि जो जन्नत में जाने वाले हैं उनकी क्या सिफात है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बनू तमीम के एक शख्स ने मेरे वालिद से कहा, ऐ अबू उसामा, हम अपने अंदर वो सिफत नहीं पाते जो अल्लाह ताला ने मुत्तकीन के लिए जिक्र की है, कानू कलीलम मिन अल्लैली मा यहजऊन, हमारा हाल तो ये है कलीलम मिन अल्लैली मा नकूम, कि रातों में बहुत कम जागते और इबादत करते हैं। मेरे वालिद ने इसके जवाब में फरमाया, खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसको नींद आए तो सो जाए, मगर जब बेदार हो तो तकवा इख्तियार करे और खिलाफ शरा कोई काम ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा था कि ऐ अब्दुल्ला बिन उमर, तुम फलां की तरह ना हो जाना जो पहले तहज्जुद के लिए उठा करता था फिर उसने उठना छोड़ दिया। तो यहाँ पे अमल का उसूल हमारे सामने जो आता है वो क्या है कि रात के वक्त जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करना। मुसनद अहमद की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को खाना खिलाओ, सिला रहमी करो, सलाम फैलाओ और रात को उठकर नमाज पढ़ो जबकि लोग सो रहे हों, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। और आप देख लें कि कभी कभार भी जागना पड़ जाए तो बस औकात कितना भारी हो जाता है ना। बहादुर शाह जफर ने बड़े खूबसूरत शेर कहे हैं कि चैन से सो रहा था मैं ओढ़े कफन मिजार में, तुम क्यों सताने आ गए किसने पता बता दिया, मेरा तुम्हारा फैसला होगा खुदा के सामने, तूने जो तीख खींच ली मैंने भी सर झुका दिया। तो आम तौर पर अपनी ज़िंदगी और गफलत की ज़िंदगी और अपनी मर्जियाँ, उसमें इंसान इतना मसरूफ़ होता है कि कुरान की बात, हदीस की बात, कुरानी क्लास की बात, क्विज़ की बात, तो ऐसी बात जो है वो बहुत ही मुश्किल लगती है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि मेहनत करनी है, तो दिन के वक्त तो अल्लाह को याद करना ही है लेकिन रात भी गफलत की नींद जो है वो नहीं सोना। फिर अगली सिफत है जो जन्नत में जाने वाले हैं जो मुत्तकी और मोहसिन हैं, इनकी अगली सिफत है, वह बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, और वही रात के पिछले पहर में अस्तगफार करते हैं। अब आप देखें कि एक तरफ जब वो तहज्जुद पढ़ रहे हैं, रात की इबादत कर रहे हैं, तो अब ये नहीं कि फ़ख्र से अगले दिन बता रहे हैं असल में मुझे इसलिए जमाइयाँ आ रही हैं कि मैं तो तहज्जुद से उठी हुई होती हूँ और मैं तहज्जुद से उठी हुई हूँ, और किसी ना किसी तरीके से वो इजहार कर देते हैं कि मैं जो है वो तहज्जुद पढ़ती हूँ, तो वो अपनी खुफिया नेकियों पर फूलते नहीं हैं, फ़ख्र नहीं करते बल्कि गिड़गिड़ा कर अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगते हैं, और उनसे जो भी गलतियाँ हो जाती हैं उस पर वो अस्तगफार करते हैं। वहम वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, और वो रात के पिछले पैरों में माफ़ी मांगते हैं। आयत नंबर 19, वफ़ी अमवालिहिम हक़ुल लिस्साइली वल महरूम, और उनके मालों में हक था साइल और महरूम के लिए। अब आप देख लें कि साइल कौन है, गरीब हाजतमंद जो सवाली होता है उसकी वो मदद करते हैं, और महरूम कौन लोग होते हैं, गरीब और ज़रूरतमंद तो होते हैं लेकिन सफ़ेद पोश लोग होते हैं, और वो किसी से हाथ फैला कर नहीं अपनी जो है वो अपने नंगे पेट को जाहिर करते या बताते कि हमारे हालात ऐसे हैं, तो चूंकि वो अपनी हाजतों को जाहिर नहीं करते तो वो महरूम रह जाते हैं। तो जो ये मोहसिनीन होते हैं, जो मुत्तकीन होते हैं, वो सिर्फ हाथ फैलाने वालों को नहीं देते, बल्कि ऐसे लोगों पर नज़र रखते हैं, उनके हालात की तहकीक करते हैं और फिर उनके ऊपर अपना माल जो है वो खर्च करते हैं। वह फी अमवालहिम, और उनके माल में हक़ुन हक है, लिस्साइली वल महरूम, साइल और महरूम के लिए। तो जब वो किसी को अल्लाह के रास्ते पे देते हैं तो ये नहीं कहते कि तुम पर कोई एहसान किया है, बल्कि उसको हक समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, उनका हक और अपना फर्ज और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उनको अता करते हैं। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 20 से 23 तक जजा और सजा की निशानियां, जो जमीन व आसमान, आफाक और इंसान के नफ्स में जो मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तरफ इशारा किया है। वफिल अर्दी आयातुल लिल मूकिनीन, ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं यकीन लाने वालों के लिए। अब आप देखें कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप कितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि ज़मीन में अल्लाह की कुदरत की बहुत सी निशानियां हैं, बार बार अल्लाह ताला अपनी तरफ जो है वो मतवज्जो करते हैं। तो ये ज़मीन और ये आसमान, ये अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है और ये दलालत करती हैं कि कयामत आकर रहेगी। ज़मीन का वजूद, इसकी साख्त, इसका सूरज से ख़ास फासले पर होना, इस पर रोशनी का इंतज़ाम, इसमें मुख्तलिफ मौसमों का तगैयुर, इस पर हवा और पानी का फराहम होना, इसके पेट में बेशुमार ख़जाने हैं, इसकी सतह पर अल्लाह ताला ने एक ज़रखेज़ छिलका चढ़ाया हुआ है और इसमें किस्म किस्म की नबातात अल्लाह ताला उगाता है। वफिल अर्दी आयातुल लिल मूकिनीन, तो यकीन रखने वालों के लिए इसमें निशानी है। वफ़ी अनफुसिकुम, और ख़ुद तुम्हारे अपने वजूद में, अल्लाह ताला कहते हैं बाहर देखने की क्या ज़रूरत है, अपने अंदर तो झांको, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। तो गौर करो अपने वजूद पर कि छोटा सा हकीर सा नुतफा, और कैसे माँ के पेट के अंधेरों में अल्लाह ताला परवरिश कर कर दर्जा ब दर्जा उसको एक खूबसूरत इंसान बनाकर जो है वो दुनिया में ले आता है। और पैदाइश भी इस हाल में होती है कि इंसान ज़िंदगी से ज़्यादा मौत के करीब होता है। फिर बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मुख्तलिफ मराहिल से इंसान जो है वो गुज़रता है। और आप देखें कि दिमाग का जो प्याला है, यानी सर के अंदर जो अजीब सा दिमाग अल्लाह ने रखा है, जिसमें शऊर, तमीज़, अक़ल, सूझबूझ, अनमोल क़ुव्वतें हैं जो अल्लाह ताला ने अता कर रखी हैं। वफ़ी अनफुसिकुम, और जिस्म का एक एक हमारा हिस्सा। और आप देखें, आप आँख को देख लें, और एक आँख के कितनी छोटी सी आंख है, इसके भी यानी मेडिकल में डिफरेंट डॉक्टर हैं जो स्पेशलिस्ट हैं। टीयर डक का अलग स्पेशलिस्ट है, और जो लेज़र सर्जरी है उसका अलग स्पेशलिस्ट है, आई साइट जो है आंख का उसका अलग है, और मज़ीद यानी आप किसी भी जिस्म के एक एक हिस्से को लेते जाएं और आप देखें कि कितनी साइंस जो है उसने तरक्की की है। तो अल्लाह पर ईमान लाने के लिए साइंस की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है? वफ़ी अनफुसिकुम, और ख़ुद तुम्हारे अपने वजूद में है। अफला तुबसिरून, क्या तुमको सूझता नहीं है, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? वफ़ी समाई रिज़्क़ुकुम, आसमान ही में तुम्हारा रिस्क भी है, और रिस्क से मुराद बारिश है, क्योंकि बारिश होती है तो ज़मीन से रिस्क पैदा होता है। वमा तूअदून, और वो चीज़ भी जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। तो मुराद क्या है? क़यामत, हशर नशर, मुहासबा वगैरह। फवा रब्बि समाई वल अर्दी इन्नहु लहक्कुन मिस्ल मा अन्नकुम तन्तिकून, पस कसम है आसमान और ज़मीन के मालिक की, ये बात हक है, ऐसी ही यकीनी जैसे कि तुम बात कर रहे हो, जैसे कि तुम बोल रहे हो। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क़यामत का आना इतना ही यकीनी है कि जैसे कि तुम्हारा बात करना यकीनी है। जैसे कोई बात करता है तो सब सुन रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है फरमा रहे हैं कि ए इंसान, तेरा बातें करना, जैसे कोई ज़बान से बात करता है तो बहुत आसान है ना, बिल्कुल इसी तरह कयामत के दिन को लाना और लोगों से हिसाब किताब लेना अल्लाह के लिए इतना आसान है कि बस कौन कहेगा और फिर कयामत बरपा हो जाएगी। तो यहाँ पे आसमान और ज़मीन दोनों के रब की कसम खाकर जो है वो कयामत के आने पर जो है वो दलालत कायम की गई है, दलील दी गई है। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 24 से लेकर 37 तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और कौमे लूत के वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। आप कुरान में ये वाक़यात पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे अल्लाह ताला ने दोबारा इनका ज़िक्र किया है। हल अता का हदीस व दैफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की हकायत भी तुम्हें पता चली। अब आप देखें कि दैफ, दैफ का लफ्ज़ अरबी ज़बान में वाहिद और तस्निया, वाहिद तस्निया और जमा सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की खबर पता चली। अल मुकरमीन, मुकरमीन जो है ये करम से है और ये जैसे मेहमान नवाजी, खैर मकदम, तवाजो, ज़ियाफ़त, फीस्ट वगैरह, ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए पिछली कौमों के वाक़यात सुनाए हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि बड़े ही मेहमान नवाज थे और मेहमानों के आते ही जो उन्होंने मेहमान नवाजी की थी तो अल्लाह ताला ने उनकी मेहमान नवाजी की भी तारीफ़ की है। अल मुकरमीन, मुअज़्ज़ज़ मेहमान, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी अच्छी उनकी ज़ियाफ़त की। इस दखलू अलैही, जब वो उनके पास आए, फ़कालू सलामा, तो उन्होंने कहा कि आपको सलाम हो। अब आप देखें कि जब मेहमान किसी के घर कोई जाए तो उसको क्या करना चाहिए, उसको जाते ही सलाम करना चाहिए, ये सवालहीन का तरीक़ा है। और मेहमानों ने जो कि फ़रिश्ते थे उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। तो जैसे सलाम जो है ये तोहफ़ा है, ये हदिया है, ये मोहब्बत बढ़ाने का और ईमान की तकमील का बेहतरीन ज़रिया है। तो हमें भी जब हम किसी को फ़ोन करें, किसी से मुलाकात करें, किसी के घर जाएं, तो सलाम करना चाहिए और इसको रवाज देना चाहिए। हेलो, हाय और गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और इस तरह की जो बात है, इसकी बजाय मुसलमानों को क्या करना चाहिए, आपस में सलाम को रवाज देना चाहिए। इस दखलू अलैही, जब वो उसके पास आए, फ़कालू सलामा, तो उन्होंने कहा आपको सलाम है। काला सलामुन, तो उसने कहा आपको, आप लोगों को भी सलाम है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। तो इससे क्या बात पता चलती है, जब सलाम दुआ होता है ना, आपस में अजनबियत ख़त्म हो जाती है और आपस में जो है वो मोहब्बत पैदा होती है। एक अजनबियत की दीवार ख़त्म हो के आपस में एक ताल्लुक़ जो है वो पैदा हो जाता है। और सलाम से बेहतरीन तरीक़ा और कोई नहीं है किसी को जो है वो दुआ देने का। और सलाम के मानी क्या हैं कि तुम्हें मेरी तरफ़ से कोई ख़तरा नहीं है, तुम मेरी तरफ़ से अमन और सलामती में हो, मेरी मेरी ज़बान से, मेरे हाथों से, मेरे जिस्म से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब भी दिया और कहा कौमुम मुनकरून, कुछ आशना से लोग हैं, कुछ ना आशना से लोग हैं। क्योंकि मुनकरून जो है, जैसे मुनकर नकीर होता है ना, तो मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जो अल्फाज हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में कहे, या तो उन्होंने अपने दिल में कहे कि मैंने लगता है इनको कहीं देखा ही नहीं, या फिर उन्होंने जो उनके घर के अंदर जो खादिम थे या घर के दूसरे लोग थे उनके पास जब गए तो उनसे जाकर कहा कि कुछ अजनबी से लोग हैं, पहले कभी इस इलाके में इस शान के और इस वज़ाकता के लोग तो नहीं आए। कौमों मुनकरून, कुछ ना आशना से लोग हैं। कुछ अजनबी। तो या तो दिल में कहे या फिर जो अपने जो खादिम थे, जो अपने घर वाले थे, उनसे जाकर कहे। ये कहाँ से आ गए, कौन है ये? और आगे उनकी मेहमान नवाजी के चार आदाब बताए गए हैं। नंबर एक, फरागा इला अहले ही, फिर वो चुपके से अपने घर वालों के पास गया। सुभान अल्लाह। अब आप देखें कि यहाँ पे मेहमान नवाजी के आदाब बताए जा रहे हैं, मेजबानी के आदाब बताए जा रहे हैं। पहली बात ये है, उन्होंने मेहमानों से ये नहीं पूछा कि पानी पियोगे कि चाय पियोगे कि खाना खाओगे कि पहले आराम करोगे। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप पूछते रहते हैं कि अच्छा तो आप ठंडा पियेंगे कि गर्म पियेंगे, आप जूस पियेंगे कि आप चाय पियेंगे, और इतने मेहमान कहते रहते कोई बात नहीं, नहीं नहीं बस आप रहने दें। ऐसा होता है ना। तो उन्होंने मेहमानों से कुछ नहीं पूछा, बल्कि क्या हुआ, फरागा इला आले ही। ये जो फरागा लफ्ज़ है ये बहुत आम है, इसका मादा है रा वो गैन, और इसके मानी हैं चुपके से किसी की तरफ मायल होना, किसी हीले की खातिर एक तरफ को हो जाना, किसी काम को नजर बचा कर करना। तो उन्होंने अपने मेहमानों को नहीं पता चला, बस खामोशी से खिसक गए वहां से और उठ गए। क्यों उठे थे? ताकि वो मेहमानों के लिए मेहमान नवाजी कर सकें, कुछ उनके खाने पीने का इंतजाम कर सकें। तो इससे पहला अदब क्या पता चलता है कि जो है वो खामोशी से उठकर जो है ना मेहमान नवाजी करनी चाहिए, उठकर खड़े हो जाना चाहिए ताकि मेज़बान को मेहमान मना ना कर दे। नंबर दो, फजा अब इजलिन समीन, और एक मोटा ताज़ा बछड़ा लेकर आए। फजा आ, जा का मतलब होता है आना, और बा की प्रेपोजिशन आ जाए, इसका सिला आ जाए तो लाना, बस लेकर आए। इजलिन, ऐन जीम लाम इसका मादा है, और इजल जो है ये इस्तेमाल होता है बछड़े के लिए, बछड़े के लिए। समीन, सीन मीम नून समन से है, और मोटापे के लिए लफ्ज़ आता है, मोटा फरबा। तो समीन के मानी क्या है? मोटा ताज़ा। जैसे जो भी उनके पास गल्ले का रेवड़ था, उसमें से जो मोटा बछड़ा था आप उसको लेकर आए। इससे क्या बात पता चलती है? इससे हजरत, ये जो इजलिन समीनिन के अल्फाज है ना, इससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फयाजी का इजहार होता है कि चंद मेहमानों की जियाफत के लिए पूरा मोटा ताजा बछड़ा जिबा करा दिया। नंबर तीन, फकर्रबहू इलेहिम, और उसे लाकर मेहमानों के आगे पेश कर दिया। फकर्रबहू इलेहिम, अब मुफस्सरीन कहते हैं कि उन्होंने ये पसंद ना किया कि मेहमानों को तकलीफ दें और उनको खाने की तरफ लेकर आए, बल्कि वो खाना जो था वो उनके पास लेकर आ गए, जहां वो बैठे हुए थे वहीं उनके सामने पेश कर दिया। फकर्रबहू इलेहिम। चौथी बात, क़ाल अला ताकुलून, फिर उससे उनसे कहा कि आप हजरात खाते क्यों नहीं हैं। अब आप देखें कि जब खाना जो है वो मेहमानों के सामने पेश कर दिया, तो अब आप क्या चाहते थे कि वो खाएं, और जब देखा कि वो खा नहीं रहे तो अब उनको इसरार करने लगे और कहने लगे अला ताकुलून, तुम खाते क्यों नहीं हो। इससे अमल का क्या असूल पता चलता है कि जब खाना मेहमानों के सामने पेश किया जाए तो उनको कंपनी भी देनी चाहिए, और उसके साथ जो है ये भी देखना चाहिए कि मेहमान खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। इसका ये नहीं मतलब कि उनके निवाले गिनने शुरू कर दिए जाएं कि वो पहली प्लेट ख़त्म कर ली, अब दूसरी ले रहे हैं, अब तीसरी ले रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि उनको इसरार से खिलाया जाए कि आप और लीजिए, आप खाइए ना, आप लीजिए ना। और वाकई थकन ख़त्म हो जाती है, मेहमान नवाजी जब आप कर रहे होते हैं तो दावत, सारा दिन जो आपने मेहनत की होती है, जब मेहमान पेट भर के खाता है तो आप खुश होते हैं कि चले अल्हम्दुलिल्लाह मेहमानों को खाना जो है वो पसंद आया है। तो ये चार आदाब हमें मेहमान नवाजी के पता चलते हैं। कि चौथा क्या था कि आप हमारी खातिर ही कुछ खाएं, आप खाएं ना, आप खाते क्यों नहीं हैं। फ़ाउ जैसा मिन हम खीफा, फिर वो अपने दिल से इनमें डरा। वो जीम सीन इसका मादा है, वजह सा, और इसके मानी होते हैं दिल में डरना। जैसे एक होता है ना कि आप डर रहे हैं और आप दूसरों को भी कह रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है और दूसरों को पता चला है, लेकिन दिल ही दिल में डरना, पोशीदा आवाज में, जैसे दिल में डरना, तो वो दिल ही दिल में जो है वो डरे। मिनहुम खीफा, उनकी तरफ से उन्हें खौफ लगा। कालू ला तखफ, फरिश्तों ने कहा कि आप डरिए नहीं। वबश्शारूहू बिगुलामिन अलीम, और उन्हें जो है एक जी इल्म लड़के की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। और गुलाम जो है किस लड़के को कहते हैं जो टीन एजर होता है, यानी मुफसरीन कहते हैं कि अलीम के मानी जो है वो इल्म वाला, और गुलाम यानी जी इल्म लड़के की पैदाइश की खुशखबरी जो है वो उन्हें सुनाई। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सूरत हूद में भी आई है, और यहाँ भी मुफस्सरीन कहते हैं कि इससे मुराद इस हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हैं। फ़अक़बलत इमरातुहू फ़ी सर्रा, ये सुनकर उनकी बीवी चीखती हुई आगे बढ़ी। फ़अक़बलत, अब इसका मतलब है कि बीवी कहीं पास ही थी, उसने ये खुशखबरी जब सुनी, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलंद आवाज़ से खुशखबरी दी गई थी, हज़रत सारा जो पास ही खड़ी थी वो हैरत और खुशी के साथ आगे बढ़ी। फी सर्रतिन, सर्रा जो है इसका मादा है स्वाद रा रा, और इसके मानी होते हैं स्वाद रा रा के, वो थैली जिसमें नकदी बांध कर रख दी जाती है। इसी तरह ये लफ्ज़ किसी गुनाह पर सख्ती से जम जाना, इसरार करना के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और गैर मामूली आवाज़ को भी सर्रातुन कहते हैं, सरीर कलम से निकलने वाली आवाज़ को कहा जाता है। ये अरबी जबान का मुहावरा है, सर्रल फरस, सर्रल फरस उजो ने ही, घोड़े ने अपनी कनोतियाँ खड़ी की। जैसे कोई आवाज़ सुनते ही घोड़ा जो है तज्जुब और हैरानी की हालत में अपने जो सर के ऊपर ऐसे दोनों साइडों में बाल होते हैं ना, उनको वो हिलाता है, तो घोड़े ने अपनी कनोतियाँ खड़ी की। तो क्या किया कि ये खुशखबरी सुनते ही बीवी चीखती हुई आगे बढ़ी। तो किसी ने इसका तर्जमा जो है वो चीखती हुई किया है, किसी ने चिल्लाती हुई का किया है, और किसी ने जो है कहा है कि हैरत में वो बीवी जो थी वो आगे बढ़ी। फसक्कत वजहा, और उसने जो है अपने मुंह पर हाथ मार कर कहा। सक्कत स्वात काफ काफ, इसका मादा है, इसके मानी होते हैं दो चीजों का आपस में कुव्वत और शिद्दत से टकराना, जैसे दो हाथों से हथेलियों से आप ताली को बजाती हैं, दो दोनों हाथों से ताली बजाना, या सद्दल बाब, आप दरवाजे को खटखटाते हैं तो तब भी आता है सक्कल बाब, आता है सक्कल बाब। इसी तरह मुंह पर तमाचा मारना या मुंह पीटना या चेहरे पर मारना, उसके लिए भी फसक्कत वजहा, उसने अपना मुंह पीट लिया। वकालत, और बोली अजूजुन अकीम, कि बूढ़ी बांझ, अजूजुन, अजूज जो है आइन जीम जा, इसका मादा है और मानी है बुढ़िया के, और अकीम, अकीम जो है आइन काफ मीम, अकीम इसके मानी होते हैं कि जैसे खुश्की, किसी का असर कबूल करने से माने होना। आयन काफ मीम जो है इसके मानिए जैसे बांझ के, और ये बेऔलाद औरत के लिए भी अकीम का लफ्ज़ आया है, और ऐसी हवाओं को भी अकीम कहा जाता है जो कि जो है वो बारिश नहीं बरसाती, खुश्क हवाएं बस ऐसे ही गुजर जाती हैं, कोई उनसे सब्जा नहीं होता, कोई बहार नहीं आती। तो उन्होंने भी कहा वकालत अजूजुन अकीम, बूढ़ी बांझ, कि एक तो बूढ़ी और ऊपर से कभी बच्चा हुआ ही नहीं। और कहते हैं उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल और हज़रत सारा की उम्र 90 साल थी, और ये बात बाइबल का बयान है। कालू कजालिक, फरिश्तों ने कहा कि ऐसा ही होगा। काला रब्बू की, तेरे रब ने यही कुछ फरमाया है। इन्नहू हुअल हकीमुल अलीम, वही हकीम है और वही सब कुछ जानता है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है फरिश्ते क्या जवाब देते हैं कि ये अल्लाह की कुदरत है, आप मुतमिन रहें, आपके रब ने ये फरमाया है और जो आपके रब का हुक्म है वो ऐसा होकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह की हिकमत, अल्लाह का इल्म हर चीज़ पर हावी है और वो जो चाहे आन की आन में जो है वो करके रख दे। तो प्यारी बहनों, सूरत अज़ारियात की ये आयात हमें अमल के क्या उसूल देती हैं? इसमें से अमल का पहला उसूल जो है वो ये है कि वो रब जो के हवाओं को चलाता है, हवाएं जो के पानी और बादल जो है वो लेके उड़ती हैं और बारिश बरसाती हैं, और अल्लाह का हुक्म जो है उसके मुताबिक ज़मीन को जलथल करती हैं या खुश करती हैं, तो जो रब ये कर सकता है वो क़यामत ज़रूर लेकर आएगा। हवाओं की कसम, आसमान की, ज़मीन की और इंसान के वजूद की कसम, और जो कुछ आसमान और ज़मीन के दरमियान है, तो इस पर कसम किस चीज़ की खाई गई है? क़यामत आकर रहेगी और अल्लाह एक है। तौहीद की दलालत, क्या करना चाहिए? एक अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए। तो हमें अपने अकायद जो है वो मजबूत करने चाहिए, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा आखिरत। दूसरी अहम बात, हमें अपने अंदर मुत्तकियों की और मोहसिनीन की सिफात पैदा करनी चाहिए। दिन के वक्त तो अल्लाह की बंदगी करनी ही है, लेकिन आखिरत में भी, लेकिन रात के वक्त जो है वो गफलत की नींद नहीं सोना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही मुस्लिम की रवायत है, कि जब रात का आखिरी हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल करता है और निदा देता है कि कोई तौबा करने वाला है कि मैं इसकी तौबा कबूल करूँ, कोई बख्शिश मांगने वाला है कि मैं उसे बख्श दूँ, कोई साइल है कि मैं उसके सवाल को पूरा करूँ, यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है। और हर रोज़ अल्लाह की तरफ से मनादी करने वाला यही मनादी जो है वो करता रहता है। तो आइए दिन भी अल्लाह की बंदगी में गुजारें और रातें भी जो है वो अल्लाह की अतात और बंदगी के अंदर बसर करें। फिर इसमें तीसरा अमल का असूल ये है कि दिन के वक्त तो अस्तगफार करना ही है, लेकिन रात के वक्त का अस्तगफार जो है इसका यहाँ पे ख़ास तौर पर ज़िक्र किया गया है कि जब कोई नहीं देखता और कोई नहीं जानता तो रात के वक्त अपने गुनाहों पर रोएं, आंसू बहाएं और जो है वो अल्लाह से गिड़गड़ाएं और तौबा इस्तग़फ़ार करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बहनों, यही सुन्नत थी। और अब जो ज़िंदगी के जिन दिनों से मैं और आप गुज़र रहे हैं, जवानी के बाद बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखना, तो इसमें जो है वो रात की इबादत को हमें अपना सरमाया बनाना चाहिए। इसके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तू मुझे इसकी तौफीक दे दे। और अल्लाह को ये अमल बड़ा पसंद है, नवाफिल में सबसे अफजल जो है ये इबादत है, और यकीनन वही खुशकिस्मत लोग ये इबादत कर सकते हैं जिनकी किस्मत जागती है, जो बड़े ही जो है वो खुशकिस्मत होते हैं। और अल्लाह ताला मुझे और आपको उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल कर ले। और फिर इसके साथ ही हम सदका खैरात करने वाले हों, जो मांगता है उसको भी दें और जो नहीं मांगता लेकिन ज़रूरतमंद है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर, और हमें अपने इर्द गिर्द रिश्तेदार दोस्त अहबाब के हालात का अंदाज़ा होना चाहिए, और फिर वक्तन फक्तन जो है वो हम मुख्तलिफ बहानों से उनकी मदद जो है वो कर सकते हैं। और आखिरी अमल का असूल जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की के वाक़े में है। नंबर एक, वो बेहतरीन मेहमान नवाज थे, और मेहमान नवाजी जन्नतियों की ख़ूबी है, और अल्लाह ताला मुझे और आपको बेहतरीन मेहमान नवाज बनाए। अब मसला ये है कि पहले ज़माने में इतनी दौलत आम नहीं थी। आप अपने वालदैन के हालात और ज़माना देखें तो कनात थी, घर भी बहुत बड़े बड़े नहीं होते थे, लेकिन सारा दिन और हर वक्त मेहमान नवाजी होती थी। और मैं अपनी अम्मी को देखती हूँ और अपनी अम्मी की बातों पे सोचती हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जैसे शहर में घर था तो कहीं से भी देहात से जब लोग आते थे तो पहले हमारे घर आते थे कि वहाँ हमें खाना पानी चाय मिल जाएगी, फिर वो अपने शहर के कामों के लिए मुख्तलिफ जगह हम जा सकते हैं। और अम्मी पहले आते ही जो कोई आता था तो उसको जो है वो, जैसे हमारे यहाँ जैसे फैसलाबाद में भैंसे गायें ज़मीनें तो आते ही उसको लस्सी दूध दिया जाता था। अब ये सोडा और पेप्सी और कोक और इसका रिवाज हो गया, तो आते ही पहले उनको दूध या लस्सी मिलती थी और शरबत वगैरह, फिर उसके बाद उनको खाना मिलता था। कभी सालन नहीं भी होता था तो अम्मी अंडे का आमलेट बनाती थी, साथ में चटनी अचार वगैरह और फिर मक्खन लगाकर, और वो जो भी मेहमान होता था उसको खाना। और अक्सर जब सालन डालती थी, हम 7 बहन भाई थे माशाल्लाह, और जब सालन डालती थी तो कहती थी एक दो बोटियाँ और एक दो आलू रहने दो। हम कहते थे अम्मी अब मतलब सबने ही खाना अब तो खा लिया, तो कहती थी कि कोई भी वक्त बेवक्त हम यहाँ पे घर में अगर मेहमान आ गया तो अब उसको खाली शोरबा तो नहीं देना ना, उसके लिए कुछ होना चाहिए। सुभान अल्लाह। और आप देखें कि वालदैन के अमल से आप कितना सीखते हैं। तो फिर उसके बाद चाय चढ़ा देती थी, फिर चाय देती थी और रोटी हाथ की गरम गरम पका के देनी। यकीनन आपकी अम्मी भी ऐसे ही करती होंगी और आप लोग माशाल्लाह बहुत ही आगे बढ़कर होंगे। और फिर उसके बाद मेहमान के लिए जो बिस्तर और सारा इंतज़ाम, तो हमारे कई रिश्तेदार या कुछ लोग कहते थे कि अम्मी को कोई भाभी कहता, कोई बहन जी कहता, कोई कहते कि मतलब आप जब चाय का वक्त होता है तो खाना क्यों पूछती हैं या खाना क्यों देती हैं, और जब खाने का वक्त होता है तो फिर अब आप चाय क्यों देती हैं। तो जब लस्सी दूध दे दिया तो फिर यानी भैया यके बाद दिख रहे आप इन सब चीज़ों को क्यों करती हैं ना। लेकिन अम्मी को जब ये करते देखा तो उससे बाज़ औक़ात हमें बड़ा मुश्किल लगता था कि कोई एग्ज़ाम होने वाला है, कोई पढ़ाई होने वाली है और हमारे घर ही मेहमान आते हैं, और कभी और बहनों को या किसी को, तो लेकिन ये कि जब उनको मुसलसल एक अमल को करते हुए देखा तो फिर क्या होता है कि आपको भी वो करना फिर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अमल से समझ में आती हैं, ज़बानी समझ में नहीं आती। तो उनके दस्तरखान छोटे होते थे लेकिन दिल उनके बड़े वसी होते थे, और उनके घर छोटे होते थे लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि जैसे आज के दौर में 5 कमरों का घर है और 7 कमरों का घर है तो कोई भी अपना कमरा नहीं देता, और कहते हैं मेहमान कहाँ जाएंगे, बेसमेंट में जाएंगे, मेहमानों के लिए कोई कमरा नहीं है, कहाँ मेहमान सोएं। और वो लोग क्या करते थे, अपना बेडरूम, अपना असल से ही कमरा मेहमानों को दे देते थे ना। तो आजकल दस्तरखान बहुत वसी हैं लेकिन दिल तंग हो गए हैं, उस ज़माने में दस्तरखान छोटे थे लेकिन दिल बहुत वसी थे, इसी तरह घर छोटे थे लेकिन दिल बहुत वसी थे। तो आइए अपने दिलों में वुसअत पैदा करें और जब मेहमान आए और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, और हो सकता है उन्हीं की खिदमत से मेरी और आपकी मग़फ़िरत हो जाए और हमें जन्नत मिल जाए। फ्रीज़र हमारा भरा हुआ, फ्रिज हमारा भरा हुआ, गाड़ी की चाबी हमारे पास होती है और पास ही साथ ही दुकानें होती हैं, और आप देखें किस चीज़ की हमारे पास कमी होती है। लेकिन खाने यानी बाज़ औक़ात लोग आते हैं, भूख भी लगी हुई होती है, आपको भी कभी भूख लगी होती होगी, आप कहीं जाते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो गया फिर, अब इतना रिवाज नहीं है ना, बीच में तकल्लुफ होता है। जब तक अच्छा है तमाम का खाना ना हो, हम मेहमानों को खाना नहीं पूछते कि अब क्या फिर क्या देती, कि सिर्फ यही फलां फलां चीज़ दे देती। तो बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से मेहमान नवाजी जो है वो पता चलती है। जो कर सके, जो कुछ मैसर हो, मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, अच्छे तरीके से दिल लगाकर हमें करना चाहिए, और साथ ही ये सोचना चाहिए कि ये पैगंबरों का उस्वा है, ये मेरे प्यारे नबी की सुन्नत है, ये जन्नतियों का काम है मेहमान नवाजी। और आखिरी अमल का उसूल जो है वो ये है कि ज़िंदगी के किसी लम्हे में कभी मायूस ना हो, और बात कोई हो, जैसे मसलन औलाद नहीं है तो अल्लाह चाहे तो बिन मौसम का अगर फल दे सकते हैं बीबी मरियम को, हज़रत ज़करिया को औलाद दे सकते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को औलाद दे सकते हैं, और अल्लाह ताला मुझे और आपको भी, जिसके जो भी बे औलाद है अल्लाह उसको औलाद दे सकते हैं। इसके साथ ही अमल का ये उसूल भी निकलता है कि जैसे मसलन किसी भी बात से आप बहुत ही परेशान हैं, मसलन बच्चे जवान हो गए, अब रिश्ते नहीं आ रहे, आप दुआएं कर रहे हैं, आप दूसरों से कह रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो अब रिश्ता हो ही नहीं रहा, तो मायूस ना हो, अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छा जोड़ा पैदा किया है और वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन कोशिशें जारी रखें और दुआ भी जारी रखें। मोमिन कभी मायूस नहीं होता। इसी तरह बच्चों के किसी अमल से बहुत परेशान हैं, बच्चे यहाँ के माहौल के अंदर रंगे गए हैं और बेहिसी बहुत है और वो चीज़ नहीं है जो कि आप चाह रही हैं, तो कोई बात नहीं, कितनी ही रात लंबी क्यों ना हो, तवील क्यों ना हो, उसकी एक सुबह जो है वो ज़रूर है। तो वो अल्लाह ही है जो कि हालात को बदलता है, तो अल्लाह ताला जो है वो हमारे बच्चों का दिल भी जो है वो बदलेगा, मेरा और आपका दिल बदलेगा, हमें नेकी की तरफ लाएगा। तो हमारा काम क्या है कि पानी की तरह बहते जाना, पानी पत्थरों में से पहाड़ों में से, झाड़ियों में से, चट्टानों में से रास्ता बनाता है और पहाड़ों को काट देता है, पत्थरों को बहा के ले जाता है, चट्टानें मुंह देखती रह जाती हैं और पानी जो है वो अपने सफ़र को जारी रखता है। और यही एक मुसलमान का किरदार है कि मुसीबतें, आजमाइशें, तकलीफ़ें, परेशानियां मुंह देखते रह जाती हैं और मोमिन जो है वो कांटों के अंदर मुस्कुराता है जैसे कि फूल कांटों में मुस्कुराता है। जंगल जंगल की धूप छाँव ही जंगल का हुस्न है, जंगल की धूप छाँव ही जंगल का हुस्न है। सायों को भी कबूल करो रोशनियों के साथ। और इसके साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। जो थके थके से थे हौसले वो शबाब बन के मचल गए, जो थके थके से थे हौसले वो शबाब बन के मचल गए, यूं नज़र नज़र से गले मिली कि बुझे चराग भी जल गए। जो संभल संभल कर बहक गए वो फरेब खुर्दा राह थे, वो मकामे इश्क को पा गए, जो बहक बहक के संभल गए। और अल्लाह ताला भी हमें ये ईमान का इश्क दे दे, ये तौहीद और आखरत का इश्क दे दे कि वो मकामे इश्क को पा गए, जो बहक बहक के संभल गए। गलती का हो जाना, बहक जाना और कोई भी लफ्जिश हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं। इंसान जो है उसे गलतियां हो जाया करती हैं, लेकिन बहक बहक के संभलना ये असल चीज़ है जो कि मकाम इश्क को पाना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको बेहतरीन और बामल मुसलमान बनाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।